ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है भारतीय न्याय संहिता में चिकित्सकीय लापरवाही से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला।
1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये 3 कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देश की समूची न्याय प्रणाली अब इन्हीं कानूनों के आधार पर संचालित होगी। इन्हीं कानूनों में चिकित्सीय लापरवाही यानी मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं, इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट श्री आशीष कुमार पांडे जी। आशीष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी आशीष जी, बिल्कुल बुनियादी सवाल से हम शुरू करेंगे। ये चिकित्सीय लापरवाही जिसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है, वो है क्या, इसका क्या पर्याय है?
देखिए, जब हम मेडिकल नेग्लिजेंस की बात करते हैं तो अब इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक उम्मीद लेकर जाते हैं और वो उम्मीद इस चीज पर आधारित होती है कि वो अपनी फील्ड का एक एक्सपर्ट है और उसकी एक्सपर्टीज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम कहते हैं, सामान्य भाषा में कहें तो, एक ड्यूटी टू केयर। उसकी एक जिम्मेदारी होती है अपने पेशेंट के प्रति कि जो भी मेडिकली पॉसिबल चीजें सही हो सकती हैं उन चीजों को उपयोग करते हुए, उन मेडिसिन को यूज करते हुए या ऑपरेशन के प्रोसीजर्स को यूज करते हुए वो अपने पेशेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल जो भी इलाज हो सकता है उसको करेंगे। अब अगर आप इस ड्यूटी टू केयर को देखें, जब कभी भी कोई ऐसी घटना हो जाती है जहां पर ये कहा जा सके कि किसी डॉक्टर्स ने या मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जो ड्यूटी टू केयर थी उस ड्यूटी टू केयर को कम्प्लीटली फॉलो नहीं किया या कहीं पर एक डेरेलिक्शन या कहीं पर एक नेग्लिजेंस था, वहां से मेडिकल नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है। अब देखिए, इसका असर क्या पड़ता है अगर कोई डॉक्टर अपनी जो ड्यूटी टू केयर है उसको प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर रहा है? उसका सीधा सीधा असर ये पड़ता है कि जो पेशेंट पूरी उम्मीद लेकर डॉक्टर के पास जाता है कि मुझको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिलेगा, उसकी कहीं ना कहीं एक उम्मीद टूटती है और दूसरी उसकी चूंकि कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज हैं तो उसका बॉडली हार्म भी उसको कॉज होती है। अब उस बॉडली हार्म को अगर आप देखेंगे, अगर डॉक्टर्स की दुनिया से दूर जाकर अगर हम इस चीजों को समझने की कोशिश करें तो कोई अगर आम आदमी या सामान्य आदमी आपको बॉडली हार्म कॉज करता है या शारीरिक नुकसान पहुंचाता है तो इसके लिए पीनल प्रोविजंस हैं, कानून में इसके लिए दंड का प्रावधान है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, उसको इस चीज की परमिशन देते हैं कि वो जो भी आपके शरीर की अगर ऑपरेशन करना है ऑपरेशन करे, कहीं कट लगाना है, चीरा लगाना है या कोई दवा देना है, तो उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है और अगर वो जिम्मेदारी फुलफिल नहीं होती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं शारीरिक क्षति पहुंचती है। इसकी वजह से हम मेडिकल नेग्लिजेंस की बात करते हैं। अब चूंकि देखिए, इस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है कि आप स्वेच्छा से डॉक्टर के पास जाते हैं और कहीं ना कहीं इसका एक असर उसकी क्रिमिनलिटी पर पड़ता है अगर मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई इंसिडेंस होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी प्रोविजंस होते हैं उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि नॉर्मल कोर्सेज में जो नेग्लिजेंस का एक स्टैंडर्ड होता है और मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में जो नेग्लिजेंस का स्टैंडर्ड होता है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है लीगल टर्म्स।
जी, ये तो हो गई चिकित्सीय लापरवाही की बात। अब हम ये समझना चाहेंगे कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड में इसके लिए क्या प्रावधान थे और नए आपराधिक कानूनों में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं।
देखिए, जो हमारा पुराना भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पीनल कोड था, उसमें सेक्शन 304A था जो कि नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर किसी की डेथ होती है उसको कवर करता था। तो देखिए, जब कभी भी मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला होता है तो ऑप्शंस क्या क्या होते हैं किसी जो विक्टिम है मेडिकल नेग्लिजेंस का। पहली चीज तो मेडिकल नेग्लिजेंस अपने आप में एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है जिसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, काउंसिल है, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स होती हैं जिनके पास एक कंप्लेंट आप कर सकते हैं। दूसरा, आप कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकते हैं क्योंकि आपको जो हार्म कॉज हुई है उसके लिए आप कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हैं डॉक्टर से या हॉस्पिटल से। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपके सवाल से जुड़ा हुआ है कि आप पुलिस अथॉरिटीज के पास भी जा सकते हैं कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मुझको एक बॉडली हार्म काज हुई है या इस पर्टिकुलर अगर हम प्रोविजन को देखें तो यहाँ पर किसी की डेथ कॉज हुई है, तो अगर मेडिकल नेग्लिजेंस से किसी की मृत्यु हो जाती थी पुरानी आईपीसी के तहत, तो उसके लिए 304A एप्लीकेबल होता था, जो कि एक जनरल प्रोविजन था जो इस चीज की बात करता था कि किसी भी नेग्लिजेंट एक्ट, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल हो या कोई एक आम आदमी हो या किसी की वजह से, किसी की भी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी व्यक्ति की डेथ होती है, वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में पनिशेबल था। अब देखिए उस पर्टिकुलर सेक्शन को इनकॉर्पोरेट किया गया है भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 106 में, लेकिन 106 में पहली बार जो डॉक्टर्स की देखिए कंसर्न थी काफी कि इन प्रोविजंस का मिसयूज भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद पेशेंट को बचा नहीं पाते, और अगर आप जिस समय ऑपरेशन चल रहा है और अगर डॉक्टर इस चीज को लेकर चिंतित है कि अगर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शायद वो उन प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करने में हिचकिचाएगा जिनको अडॉप्ट करने से शायद हो सकता है, जो रिस्की हो सकते हैं, लेकिन शायद पेशेंट की जान बच जाती। तो देखिए बड़ी एक संतुलन रखा गया है भारतीय न्याय संहिता में, और इसके लिए सरकार साधुवाद की पात्र है। देखिए नया सेक्शन 106 ये कहता है कि अगर नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की डेथ कॉज होती है जनरल कंडीशंस में एक्सेप्ट मेडिकल नेग्लिजेंस में, तो वहां सजा का प्रोविजन 5 इयर्स रखा गया है, जबकि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में ये डेथ कॉज होती है और ये प्रूफ हो जाता है कोर्ट में कि डॉक्टर्स नेग्लिजेंट थे, ड्यूटी टू केयर को वो फॉलो नहीं कर पाए लेटर एनेस्पेक्ट में, तो वहां सजा का प्रावधान केवल 2 साल के लिए रखा गया है। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है, अगर मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हो या बाकी हमारी देश की जनता सुन रही हो, भारतीय न्याय संहिता में डॉक्टर्स के इन्हीं हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक सेक्शन 26 भी जोड़ा गया है, जो ये कहता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति की भलाई की इच्छा से उसके लिए कुछ करते हैं और उससे अगर डेथ कॉज होती है और उस व्यक्ति की उसमें कंसेंट भी होती है कि आप मेरे ऊपर ये प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ऐसी केसेस में मेडिकल नेग्लिजेंस का केस नहीं लागू होगा, और 106 में जो 2 साल की सजा का भी प्रावधान है वो भी इस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि नेग्लिजेंट एक वहां पर नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या उस दौरान जिस समय ऑपरेशन चल रहा था या मेडिकल प्रोसेस प्रोसीजर चल रहा था उस समय डॉक्टर ने अपना बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट यूज किया और उसके अकॉर्डिंगली कोई प्रोसेस अडॉप्ट की या ऑपरेट किया पेशेंट को, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से या दुर्भाग्य के कारण वो उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका, तो उस स्थिति में डॉक्टर्स को भारतीय न्याय संहिता प्रोटेक्ट भी करती है। तो डॉक्टर्स के हितों का और पेशेंट्स के हितों का एक बहुत ही खूबसूरती से सामंजस्य बनाने की, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है इस नए कानून में।
बिल्कुल, नए कानून जैसा आपने बताया कि मरीजों और चिकित्सकों के बीच के संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए और बेहतर करने के लिए लाए गए हैं। इसी में अगर हम ये जानना चाहें कि क्या ये नए कानून अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को और अधिक जिम्मेदारी या फिर कहें जवाबदेही के साथ काम करने को प्रेरित करेंगे?
जी देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। देखिए पुरानी जो भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पीनल कोड था, उसका सेक्शन 304A में कहीं भी मेडिकल नेग्लिजेंस टर्म को यूज नहीं किया गया था, वो एक जनरल टर्म था। लेकिन पहली बार भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 106 में इस टर्म को यूज किया गया है कि जहां पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा अगर कोई नेग्लिजेंट एक्ट होता है जो कि डेथ में रिजल्ट होता है, इस वर्ड को यूज करना अपने आप में कहीं ना कहीं संकेत देता है कि एक ऑब्लिगेशन पोस्ट की गई है डॉक्टर्स या मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर कि जब भी आप पेशेंट्स के ऊपर कोई भी मेडिकल प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हो उस समय आपकी जो ड्यूटी ऑफ केयर है उसका एक बड़े हाई पेडेस्ट्रियल पर रखा गया है। क्योंकि आप देखिए हमारे देश में क्या होता है, डॉक्टर्स को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, तो अगर उस डॉक्टर के पास जाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति एक इलाज के सही इलाज के बाद ठीक होने की जगह एक इस कगार पर पहुंच जाता है जहां पर उसको कोई इंजरी कॉज हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो एक फेथ बेस्ड सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है। तो पहली बार भारतीय न्याय संहिता में मेडिकल नेग्लिजेंस टर्म को यूज किया गया है जो अपने आप में इस चीज को इंगित करता है कि सरकार की ये मंशा रही है कि मेडिकल कम्युनिटी भी मेडिकल नेग्लिजेंस के जो केसेस होते हैं उसको सीरियसली ले और कहीं ना कहीं जो भी कुछ केसेस हो रहे हैं, अगर मैं डेटा पर जाऊं, जिस समय हमारे नए कानून फ्रेम हो रहे थे उस समय IMA की तरफ से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन दी गई थी होम मिनिस्ट्री को, उसमें कुछ डेटा दिया गया था, तो उस डेटा से निकल कर आया कि कंसर्न ईयर में अप्रोक्सीमेटली 98,000 ऐसे केसेस थे जहां पर मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से डेथ कॉज हुई है। विज आप देखेंगे 5 लाख केसेस जो टोटल मेडिकल नेग्लिजेंस के कंसर्न प्रोविजंस में फाइल किए गए, तो फिर भी 1 लाख के आसपास का डेटा भी एक बहुत बड़ा डेटा होता है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक साल में इस देश में 1 लाख मृत्युएं हुई करीब। तो इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पर हमको डॉक्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है कि वो बिना किसी भय के या किसी इस दुविधा के कि उनको सजा हो सकती है फ्रीली मेडिकल प्रोसेसेस को अडॉप्ट कर पेशेंट के लिए जो भी बेहतर हो सकता है वो करें, वहीं पर इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि एक ड्यूटी टू केयर जो एक फंडामेंटल नेचर है किसी भी डॉक्टर मेडिकल सर्विस का, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए जिससे कि पेशेंट्स का जो विश्वास है डॉक्टर्स पर वो बना रहे।
बिल्कुल आशीष जी, हमने कई बार देखा है कि तीमारदार जो मरीजों के होते हैं वो अस्पताल में नाराज होकर तोड़फोड़ कर देते हैं, कई बार चिकित्सकों के साथ भी दुर्व्यवहार की खबरें आती हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता में अस्पतालों और चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं?
देखिए, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी। देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन गई थी होम मिनिस्ट्री को जिस समय ये लॉज पर डिबेट चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, उसमें एक डिमांड ये थी कि जनरली आप देखते हैं कि डॉक्टर्स के पास, जैसे आपने कहा, तीमारदार जाते हैं या हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और चूंकि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंस हो जाता है जहां पर उनके जिस व्यक्ति को वो लाते हैं, जिस मरीज को लाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है या अन्य कारण हो सकते हैं, उस समय इमोशंस बहुत हाई रन करती हैं, एक एजिटेटेड स्टेट में होती हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे जो साथ में आए हुए तीमारदार होते हैं उनकी डॉक्टरों से बहस हो जाती है, उनको लगता है कि डॉक्टर्स ने ठीक से अपना काम नहीं किया है, और कई बार ऐसी सिचुएशन काफी वायलेंट भी हो जाती है। तो एक रिप्रेजेंटेशन इसके लिए भी दी गई थी। देखिए, एज फार एज ये पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जो हमारे लॉस हैं, उनमें जनरल प्रोविजंस में डॉक्टर्स, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ वायलेंस करते हैं वो सेम केस डॉक्टर्स के साथ किए गए वायलेंस पर भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन चूंकि डॉक्टर्स के साथ किसी हॉस्पिटल में किए गए वायलेंस को कवर करने के लिए इंडिया में एक सेपरेट एक्ट पास किया गया है, कुछ समय पहले कानून आया था, तो उसके लिए अलग प्रावधान है, अलग सजा है। अगर आज आप किसी हॉस्पिटल जाएंगे तो मोस्टली आप पाएंगे कि रिसेप्शन के पास उन्होंने इस चीज को लगाया होता है इंडिकेट करते हुए कि अगर आप इस मेडिकल प्लेस पर, हॉस्पिटल पर किसी भी तरीके की वायलेंस करते हैं या अभद्रता करते हैं तो आपके खिलाफ इन इन प्रावधानों में इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए, ये कंसर्न बिल्कुल वाजिब है, जायज है, डॉक्टर्स की इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं मरीजों की भी एक शिकायत रहती है कि जो ड्यूटी टू केयर है, जो डॉक्टर्स को जिस तरीके की तत्परता दिखानी चाहिए, जितनी अलर्टनेस होनी चाहिए और जिस तरीके से इलाज करना चाहिए, शायद उसमें वो फील करते हैं कि उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो BNS की जहां तक हम पर्टिकुलर बात करते हैं, तो इस कानून में जिस प्रावधान को जोड़ा गया है, क्रिमिनलिटी अटैच की गई है मेडिकल नेग्लिजेंस को, पहली बार मेडिकल नेग्लिजेंस वर्ड को यूज किया गया है, इसका एक कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और हम देखेंगे शायद इस पर्टिकुलर प्रोविजन की वजह से ही शायद जो तीमारदारों और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो शायद अब हो सकता है कम हो जाएं।
आशीष जी, आप कार्यक्रम से जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण और सारगर्भित जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारतीय न्याय संहिता में चिकित्सकीय लापरवाही से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।